का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुन रहे हैं कहानी नींद के बाहर का दूसरा भाग और इसके लेखक हैं धीरेंद्र अस्थाना। पहले भाग में आपने सुना था कि सम्राट समूह से नौकरी छूट जाने के बाद धनराज का जीवन किस तरह अस्त व्यस्त हो गया। जिन रिश्तों, जिन रवायतों और जिस सोसाइटी से वो बिल्कुल अपरिचित हो चुका था, आज एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने आते चले जा रहे थे। किस तरह नींद के अंदर एक महानींद में वो सोया हुआ था। लेकिन आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं अगले भाग में। पता नहीं क्यों धनराज को इन दिनों नींद नहीं आती। देर तक वो अपनी विशाल कॉलोनी में जहां तहां घूमता रहता। पहले जीवन नाक की सीध में चलता था, इसलिए वो कॉलोनी तो क्या, अपनी सोसाइटी तक के लोगों से अपरिचित था। मगर अब तो वो पूरी कॉलोनी के ही रहस्यों से दो चार होने लगा था। पता नहीं क्या सोचकर बिल्डर ने कॉलोनी का नाम गोल्डन नेस्ट रखा था। डाल डाल और पात पात तो क्या, वहां कहीं भी कोई सोने की चिड़िया बसेरा नहीं करती थी। इस सुनहरे घोंसले को बिल्डर ने इस तरह बनाया था कि उसमें सभी आय वर्ग के लोग रह सकें। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी उस कॉलोनी का विशाल मेन गेट बंद होते ही वो पूरी तरह से बंद सुरक्षित किले जैसी हो जाती थी। गेट के भीतर की तरफ खुलते ही बीचों बीच दूर तक चली गई सड़क के दोनों ओर बाजार था। सड़क के पहले दाएं मोड़ पर वन रूम किचन के 250 फ्लैटों वाला सेक्टर एक था। दूसरे दाएं मोड़ पर वन बेडरूम हॉल के 250 फ्लैटों वाला सेक्टर दो था। सड़क के पहले बाएं मोड़ पर टू बेडरूम हॉल के 250 फ्लैटों वाला सेक्टर तीन था और दूसरे बाएं मोड़ पर सेक्टर चार था, जहां सड़क खत्म होती थी। वहां बंगले नुमा 50 रो हाउसेस थे। ये सेक्टर 5 कहलाता था। इस कॉलोनी के भीतर एक बहुत बड़ा पार्क, स्विमिंग पूल, अस्पताल, ब्यूटी पार्लर, पोस्ट ऑफिस, सिनेमा हॉल, स्कूल, हेल्थ क्लब और बैंक भी था। सेक्टर 5 यानी रो हाउसेस आधे से ज्यादा खाली थे, बाकी किराए पर उठे हुए थे। इनमें अधिकतर निजी नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर्स, अंग्रेजी के प्राइमरी स्कूल, कंप्यूटर सेंटर, फैमिली रेस्टोरेंट, साइबर कैफे और कम्युनिकेशन सेंटर खुले हुए थे। सड़क के दोनों ओर बने बाजार सभी तरह की दुकानों से भरे हुए थे। जरूरत का हर सामान वहां मौजूद था। कॉलोनी में दो मंदिर भी थे, एक गणपति का, दूसरा शिरडी के साईं बाबा का। हाँ, मस्जिद वहां एक भी नहीं थी। वो कॉलोनी के बाहर हाईवे के उस तरफ स्टेशन जाने वाली सड़क पर बसे नया नगर इलाके में थी। ये 6 दिसंबर के बाद हुए दंगों का ध्रुवीकरण था कि ज्यादातर मुसलमान हाईवे के उस तरफ और हिंदू हाईवे के इस तरफ सिमट गए थे। नया नगर का पूरा इलाका लगभग मुस्लिम परिवारों का था। मीरा रोड के हिंदू नया नगर को मिनी पाकिस्तान कहते थे। हाईवे के उस पार भी काफी परिवार हिंदुओं के थे, लेकिन आबादी ज्यादा मुस्लिम्स की ही थी। वहां भी जब जिसको मौका मिलता अपना घर बेचकर गोल्डन नेस्ट आ जाता था। गोल्डन नेस्ट में मुसलमानों के 7-8 परिवार ही रहते थे, लेकिन वे सभी वहां किराएदार थे, मकान मालिक नहीं थे। उन्हीं में से एक टेलर मास्टर याकूब भी था, जिसकी लड़की सकीना ने चूहे मारने वाला जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वो सेक्टर 1 में किराएदार ही था और अब हैदराबाद चला गया था। धनराज का घर सेक्टर 2 में था। सेक्टर 2 में ज्यादातर लोग सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी थे, जिन्होंने इधर उधर से कर्ज लेकर 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपने फ्लैट्स बना लिए थे। सेक्टर 1 में निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते थे। इनमें छोटे मोटे अध्यापक, लोअर डिविजनल क्लर्क, ऑटो टैक्सी चलाने वाले, फिल्मों और सीरियलों में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे भविष्य के नेता, पटकथा लेखक और गीतकार संगीतकार निवास करते थे। सेक्टर 3 और 4 साहबों की दुनिया थी। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे बड़े प्रोड्यूसर, शेयर मार्केट के ब्रोकर, बैंकों के अधिकारी, मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारी, टीवी चैनलों में कार्यक्रम अधिकारी, कालबा देवी के छोटे व्यापारी, मेडिकल स्टोर्स के मालिक, अखबारों के संवाददाता, वकील और प्रोफेसर्स रहा करते थे। सेक्टर 3 और 4 के नागरिक सेक्टर 1 और 2 की तरफ जाना तो दूर, झांकना भी पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये अलग बात थी कि बाजार ने उनकी निजी पहचान मिटा दी थी। सेक्टर 1 और 2 के लोग भी अपनी अपनी विशिष्टता कायम रखने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उनकी संपन्नता में 10x15 के सिर्फ एक ही कमरे का फर्क था, इसलिए उन दो सेक्टरों में आवाजाही चलती रहती थी। सेक्टर 1 और 2 के ही नहीं, मुख्य बाजार के भी काफी लोग सेक्टर 2 के ताजा ताजा बेरोजगार हुए धनराज चौधरी को नाम और शक्ल से पहचानने लगे थे। वाइन शॉप वाला बिना मांगे ओलमंग कम देता था, सिगरेट वाला विल्स का पैकेट, मटन शॉप वाला चॉप और गर्दन का गोश्त देता था, साथ में मछली की हड्डी। सब्जी वालों को पता था कि उसे करेला, कटहल, पालक, टिंडा, मटर और शलगम गाजर पसंद है। चिकन की उसकी अपनी पसंदीदा दुकान थी और मछली की अपनी। घर का राशन पानी अस्मिता सुपरमार्केट से आता था और बाल लकी हेयर कटिंग सलोन में कटते थे। मेडिकल स्टोर वाला धनराज को देखते ही नॉर्मस 5 mg का पत्ता पकड़ा देता था। शीतल नॉनवेज का मालिक उसे नाम से बुलाता था और उसे देखते ही वेटर को पहाड़ी या रेशमी कबाब पार्सल करने का हुक्म सुना देता था। वो मोल भाव करने और सब्जियां खरीदने में पारंगत हो गया था। कॉलोनी और उसके बीच जो अपरिचय का विंध्याचल था वो क्रमशः गलने लगा था। धनराज ने देखा कि दैनंदिन जीवन जीते संघर्षरत लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वे सिर्फ इस बात पर नजर रखते थे कि किसके किचन में क्या पका, किसके घर कौन सा नया सामान आया, किसने किसके जन्मदिन पर क्या दिया या किस घर की लड़की या लड़का किससे फंसा हुआ है। रोजगार उनके लिए सिर्फ माध्यम था, ताकत या घमंड का प्रतीक नहीं। उनके दुख इस विषय में लिपटे थे कि सुबह पानी समय पर नहीं आया और उन्हें बिना नहाए काम पर जाना पड़ा। ट्रेन पकड़ लेना उनके लिए सबसे बड़ी जंग थी। फोन के खराब हो जाने पर वे घंटों बहस कर सकते थे और बिजली चले जाने पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम कर सकते थे। धनराज ने पाया कि कॉलोनी की औरतें उससे बात करने लगी हैं और बच्चे नमस्ते अंकल कहने लगे हैं। वॉचमैन उससे अपनी तकलीफें शेयर करने लगे हैं और दुकानदार लगातार गिरते बाजार का रोना रोने लगे हैं। इतने सारे लोगों में किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि धनराज की नौकरी चली गई है। उन्हें लगता था कि ऐसे लोगों की नौकरियां तो लगती छूटती रहती ही हैं। भाई साहब, हमारा एक काम करेंगे क्या? एक दिन रास्ते में उसे देविका ने टोक दिया। क्या? धनराज ने देविका को जांचा। वो ऊंची, भरी पूरी, शानदार महिला थी। अगर उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप और काम चलाओ जेवर होते तो वो सेक्टर 1 और 2 की हेमा मालिनी बन सकती थी। वो सेक्टर 1 में रहती थी और धनराज समेत सेक्टर 2 के कई घरों में उसका आना जाना था। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे बात करने की, उसने अपने पति का पक्ष सामने रखा। ये लेडीज के अंडरगारमेंट्स बेचने वाली कंपनी में ना सेल्समैन है, टूर से लौटकर इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, लेकिन ये अंग्रेजी नहीं जानते। क्या आप इनकी हिंदी रिपोर्ट को अंग्रेजी में बना देंगे? ठीक है, उसने गर्दन हिला दी। थैंक यू भाई साहब। देविका गदगद हो गई। रात के भोजन पर सरिता ने बताया, देविका के घर से तुम्हारे लिए मिर्ची का अचार और गट्टे की भाजी आई है। लेकिन देविका के पति रतन केड़िया की मार्केट रिपोर्ट ने धनराज को विचलित कर दिया। रतन केड़िया की रिपोर्टें देसी रोजगार का मर्सिया थी। जयपुर हो या जोधपुर, गोवा हो या नागपुर, सतारा हो या सांगली, अजमेर हो या कोल्हापुर, पुणे हो या नासिक, रत्नागिरी हो या इंदौर, हर जगह स्त्रियों के अंतः वस्त्रों पर नामी ब्रांड्स हावी थे। बड़े शहरों में स्त्रियों के तन विदेशी ब्रांड ढक रहे थे। ऐसे में रतन केड़िया की लोकल कंपनी कहाँ ठहर सकती थी? कुछ ही समय बाद रतन केड़िया की रिपोर्टें आनी बंद हो गईं। रतन केड़िया ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और हंसने लगा। नौकरी चले जाने पर ये लोग हंसते क्यों हैं? धनराज ने सोचा लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उन्हीं दिनों एक रात वो थैले में सब्जियां, अंडे और शराब लेकर लौट रहा था कि उसने सेक्टर 2 के सेक्रेटरी हिमांशु शाह को उसके फ्लैट के नीचे खड़े सिगरेट पीते देखा। नीचे क्यों खड़े हो? धनराज ने यूं ही सवाल उछाल दिया। शाह ने नई सिगरेट सुलगा ली। आज मुझे नौकरी से हटा दिया गया है, शाह खिसियाकर बोला। समझ नहीं आ रहा क्यों ये बात ऊपर जाकर हर्षिता को कैसे बताऊं। हर्षिता हिमांशु की पत्नी का नाम था। हिमांशु अपोलो टायर में काम करता था। 20 दिन पहले ही उसने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मनाया था और पूरे सेक्टर 2 को चिकन बिरयानी की दावत दी थी। धनराज के लिए उसने विशेष इंतजाम किया था। लोगों की नजरें बचाकर वो धनराज को अपने बेडरूम में छोड़ आया था, जहां रॉयल चैलेंज की एक बॉटल 3-4 सोडों के साथ पड़ी थी। धनराज 3 पैग पीकर वापस टेरेस पर चलती पार्टी में शरीक हो गया था। अब क्या करोगे? धनराज ने पूछा। देखते हैं, हिमांशु बोला। कुछ नहीं हुआ तो घर बार बेचकर गांव चले जाएंगे। हिमांशु अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। गांव? धनराज के हलक में कांटे से गड़ने लगे। गांव के नाम पर उसे सुबह ही पढ़ी गई एक खबर याद आ गई। वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बारानांद गांव की खबर थी। शताब्दी के सबसे भीषण सूखे के कारण ग्रामीण लोगों की स्थितियां विकट हो गई थी। गांव के लोग पेड़ों की छाल पीस कर खा रहे थे। फसलें तबाह हो गई थी। जिन लोगों के पास किराए लायक पैसे थे वे काम की तलाश में निकट के शहरों में निकल गए थे। जिनके पास पैसे नहीं थे वे गांव में भूखे प्यासे मर रहे थे। और ये केवल बारानांद गांव की कहानी नहीं थी। गांव दर गांव भूख प्यास का प्रेत मंडराता फिर रहा था। कुटीर उद्योग तबाह हो गए थे, रोजगार उपलब्ध नहीं थे। ऐसी कोई कंपनी नहीं बची थी जहां 10-20 या 30% कर्मचारी छंटने के शिकार नहीं हो रहे थे। ऐसे में धनराज का जन्मदिन आया। सुबह सुबह जगाकर सरिता और रोहित ने धनराज को विश किया। फिर सरिता ने ताना जैसा मारा, आज कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही? धनराज ने नींद की दुनिया में जाकर देखा। वो एक 3-सितारा होटल का पार्टी रूम था, जहां उसके जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी। शहर के करीब 50 लोग उस पार्टी में शरीक थे। उनमें एक टीवी चैनल का कार्यक्रम प्रमुख भी था। कुछ पत्रकार थे, कुछ ठेकेदार थे, कुछ होलसेल विक्रेता थे, 2 बैंकों के डिप्टी मैनेजर्स थे, अनेक बिजनेस समूहों के मीडिया मैनेजर थे, कुछ PRO और कुछ सरकारी अधिकारी थे, एक इंटरनेट कंपनी का कंसल्टेंट एडिटर था और थी कुछ उदीयमान मॉडल्स। सब के सब कोई ना कोई तोहफा लेकर आए थे और अपने अपने ड्रिंक्स के साथ अपने अपने जुगाड़ में व्यस्त थे। एक फोटोग्राफर इस खुशगवार मौके को कैमरे में कैद कर रहा था। वेटर पनीर टिक्का, चिकन टिक्का और सीख कबाब सर्व करने में तल्लीन था। दुखों की सूचनाओं तक से दूर जगर मगर करता वो बाजार वहां पिछा पड़ा था। जन्मदिन वाले रोज धनराज सुबह सुबह तैयार होकर फोन के पास बैठ जाता था। उस दिन वो दफ्तर से छुट्टी लेता था। कई वर्षों से यही नियम था। हर बरस वो गिनती करता था कि जन्मदिन की बधाई देने वालों में से कितने लोगों की घट और बढ़ हुई है। उसका ये प्रिय शगल था। बधाई देने वालों में से कुछ को वो शाम को होने वाली पार्टी में निमंत्रित भी करता था। सम्राट समूह से कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का इच्छुक व्यापारी ये पार्टी आयोजित करता था। इस पार्टी में सौदों का लेन देन भी होता था। ऐसी अनेक पार्टियों के फोटो एल्बम धनराज की वॉल यूनिट की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन इस बार धनराज देर तक सोता रहा। पत्नी के ताने पर वो मुस्कुरा भर दिया। दिन भर में कुल मिलाकर 3 फोन आए। एक उसके भाई राकेश चौधरी का, एक उसकी सास का और तीसरा उसके फैमिली डॉक्टर राणावत का। शाम 7 बजे चौथा फोन आया उसके पड़ोसी हिमांशु शाह और उसकी पत्नी हर्षिता का। उसे याद आया, एक जन्मदिन के भव्य आयोजन में उसने शाह दंपति को भी निमंत्रित किया था। तुम्हारा फोन आने से सचमुच अच्छा लगा हिमांशु, धनराज द्रवित हो गया। अरे क्या बात करते हैं धनराज जी, हिमांशु ने गर्मजोशी से कहा। आज आपके जन्मदिन की पार्टी हमारे तरफ से हमारे घर में है। आप भाभी और रोहित के साथ 8 बजे पहुंच जाइए। धनराज बेआवाज बिखर गया। निष्कपट जीवन नींद के बाहर ही है धनराज, धनराज ने सोचा। तुमने व्यर्थ ही अपना जीवन यूं सुखा डाला। पैसे कमाने की बजाय अगर तुमने रिश्ते कमाए होते तो जीवन का रंग आज कुछ और ही होता। और पैसे भी क्या कमाए, हाँ? एक छोटा सा फ्लैट, जरा सा बैंक बैलेंस, और वो भी अपनी नींदें बेचकर। माँ जैसे दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते की अकारण नाराजगी मोल लेकर धनराज को अपनी माँ याद आ गई, बचपन वाली माँ। माँ धनराज का जन्मदिन मना रही थी। वो मुजफ्फरनगर का सड़क किनारे बना एक सीलन भरा कमरा था, जिसके बाहर बने बड़े से नाले से कीचड़ और मलमूत्र लगातार बहता रहता था। उन दिनों पिता का ट्रांसफर जोशीमठ में हो गया था और पिता ने परिवार को यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि जोशीमठ में परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं थी। मुजफ्फरनगर के उस किराए के कमरे में माथे पर टीका लगाकर मिठाई के नाम पर गुड़ खाया था धनराज ने, और गुल्ली डंडा खेलने मैदान में चला गया था। तब तक बबलू और ममता पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके पैदा होने के बाद भी घर में सिर्फ धनराज का ही जन्मदिन मनाया जाता रहा। पता नहीं क्यों, पता नहीं धनराज को इन दिनों बहुत अजीब और बेहुदा ख्याल आते रहते और वो चिंता से भर जाता। पढ़ लिख कर या पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गए सेक्टर एक के जवान छोकरों को धनराज पार्क की बेंचों, चाय घरों या पान की दुकानों के बाहर खाली बैठा देखता, और उसे लगता कि इनमें से कुछ लड़के जल्दी ही अरुण गवली या दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल हो जाएंगे। वो उन्हें अपनी कल्पना में सेक्टर 4 के लोगों को शूट करते देखता और पसीने पसीने हो जाता। वो देखता कि रोहित की कंपनी भी बंद हो गई है और वो गोल्डन नेस्ट के बाहर उबले हुए अंडे बेचने लगा है। कभी वो देखता कि उसने अपना मकान बेचकर सेक्टर 1 में वन रूम किचन ले लिया है और ऑटो चलाने लगा है। कभी उसे दिखाई देता कि उसने बबलू को फोन किया है और बबलू ने मुंबई आकर सम्राट समूह के चेयरमैन का भेजा भून दिया है। जब कभी वो मार्केट में खरीदारी के लिए निकलता तो एक एक दुकान को गौर से देखता और सोचता कि वो किस चीज की दुकान खोल ले ताकि व्यस्त भी रहे और 4 पैसे भी कमाए। लेकिन हर दुकान का मालिक उसे बताता कि उसका धंधा मंदा चल रहा है, दुकानें उठ रही हैं, व्यवसाय बैठ रहे हैं, अपहरण, डकैती और हत्याएं बढ़ रही हैं। धनराज जब जब एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाता, अपना बैलेंस देखकर चिंताग्रस्त हो जाता। बैंक में पैसे जमा नहीं हो रहे थे, सिर्फ निकलते जा रहे थे। अगले महीने ममता की शादी थी। हाथ, गले और कान के जेवरों का उसने जो वादा किया था उनका एस्टिमेट 35,000 बैठ रहा था। कम से कम 10,000 आने जाने में खर्च होने वाले थे। अभी तक धनराज ने रोहित की तनख्वाह पर नजर नहीं डाली थी, लेकिन अब उसे रोहित के खर्च खटकने लगे थे। उसने पाया कि रोहित ने अब तक जो भी कमाया था वो सब का सब महंगी कमीज पैंटों, वीकेंड पार्टियों, सिनेमा और जूतों पर उड़ा दिया था। अब उसे जीन्स और टॉप पहनकर कभी कभी घर चली आने वाली रोहित की गर्लफ्रेंड भी करने लगी थी। तू मोबाइल और बाइक कब लेगा यार, लड़कियां धनराज के सामने ही रोहित को नए खर्चे के लिए उकसाती और धनराज कुढ़ता रहता। इसी कुढ़न में एक दिन उसने अपना एसी और वीसीआर बेच दिया और पैसे बैंक में जमा कर दिए। उसका तर्क था कि मुंबई में एसी की जरूरत नहीं है और वीसीआर गए जमाने की चीज हो गई है, इतने सारे चैनल हैं, 24 घंटे फिल्में चलती हैं, ऐसे में वीसीआर की कोई उपयोगिता नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने एक साइबर कैफे को अपना कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर माय कंप्यूटर टेबल के बेच दिया। उसका कहना था कि अब रोहित पूरे दिन दफ्तर में व्यस्त रहता है और शामों को कंप्यूटर के नए कोर्स की कक्षाओं में, इसलिए घर में फालतू सामानों की भीड़ बढ़ाने की कोई तुक नहीं है। कुछ दिनों बाद धनराज अपनी फैक्स मशीन भी बेच आया। उसका कहना था कि जब नौकरी ही नहीं है तो फैक्स किसके आएंगे। सरिता और रोहित आदर्श पत्नी और आज्ञाकारी बेटे की तरह जीते आए थे, इसलिए उन्होंने धनराज की हरकतों का सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन अब वे दोनों भी चिंतित हो गए। दोनों को एक साथ लगा कि धनराज कहीं उन्हें मुंबई के पहले वाले दिनों में तो नहीं ले जाना चाहता है। दोनों को लगा कि समय रहते जाग जाना चाहिए। रात को 1-2 पैग पी लेने के बाद धनराज का सामना रोहित से हो गया। उसने टीवी बंद किया और रोहित को अपने सामने बिठा लिया। रोहित चौकन्ना हो गया। देखो, मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है, तुम्हारी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं मैं। लेकिन तुम खुद बताओ। धनराज ने तीसरा पैग बनाया। अब जब तुम्हारा बाप बेरोजगार है, एसएम क्या तुम्हें शोभा देता है कि तुम अपनी पगार वैन ह्यूजेन के पैंटों, चिराग दीन की शर्टों और 2000 के जूतों पे खर्च करो है? वीकेंड की पार्टियों में 1500 का कंट्रीब्यूशन करो? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए रोहित, तुम्हें तो 6000 रुपए मिलते हैं। 1000 रुपए अपने खर्चे के लिए रखो और 5000 रुपए बैंक में जमा कर दो। एक साल में 60000 रुपए, यू नो, ये पैसा एक दिन तुम्हें बहुत ताकत देगा। धनराज ने तीसरा पैग समाप्त कर दिया। मैं ऐसा नहीं सोचता पापा, मैं कमाने और खर्च करने में यकीन करता हूं। रोहित ने पहली बार अपने पिता के साथ बहस की। आप देखते ही हैं कि डी गैंग के शूटर बिल्डरों, प्रोड्यूसरों और डॉक्टरों को गोलियों से भून देते हैं और उनका पैसा यहीं पर रह जाता है। पिछले दिनों सेक्टर 4 में रहने वाला मेरा एक दोस्त मकरंद जोगेश्वरी में खंभे से टकराकर ट्रेन से गिरा था, अब तक कोमा में है। मकरंद एक मल्टीनेशनल कंपनी में वेब डिजाइनर था।
अरे वाह,
धनराज तालियां बजाने लगा।
तुम तो बहुत समझदार हो गए हो।
धनराज हंसने लगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सेक्टर 4 के लड़के के साथ तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छे संकेत नहीं है। तो मैं क्या सेक्टर 1 के टपोरी लड़कों के साथ रहा करूं? रोहित ने तिलमिलाकर जवाब दिया। धनराज चुप हो गया। वो खुद भी ये कहां चाहता था कि उसका बेटा सेक्टर 1 के लड़कों जैसा हो जाए। तो फिर क्या चाहता है धनराज? धनराज ने सोचा और चौथा पैग बनाने लगा। अब बस करो, आखिर सरिता ने हस्तक्षेप किया। लड़की की तनख्वाह पर आंख गड़ाने से बेहतर है कि तुम शराब पीना छोड़ दो। क्या? धनराज आहत हो गया।
तुम भी? ओके, छोड़ देता हूं,
धनराज ने कहा और रम की बची हुई बोतल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रात के अंधेरे और सन्नाटे में फ्लैट के पिछवाड़े गिरने के बावजूद बोतल के टूटने से खासा शोर मचा। वॉचमैन की सीटियां गूंजने लगी। 2-3 लोगों ने अपनी अपनी खिड़कियों से झांक कर भी देखा। धनराज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी आंखें एक अजीब से अचंभे में पहुंचकर स्थिर हो गई थीं। फिर वो सोफे पर पसर गया। बहुत दिनों बाद धनराज बिना खाना खाए सो गया।
सॉरी पापा।
सोते हुए धनराज के माथे पर किस किया रोहित ने।
मैं आपकी तकलीफ समझता हूं।
सरिता की आंख में बड़े दिनों के बाद आंसू आए। वो धनराज के जूते उतारने लगी। देर तक बेडरूम की खिड़की से बाहर अंधेरे को ताकती हुई वो सोचती रही कि उनकी गृहस्थी को किसका शाप लगा है। उस रात दिल्ली के एक महंगे इलाके में धन पशु कॉलेज की एक लड़की से बलात्कार करने के बाद उसे काट काट कर तंदूर में भूना जा रहा था और मुंबई के कुछ होटलों में बेवियां बदलने का खेल चल रहा था। गोल्डन नेस्ट के बाहर हाईवे पर शेयर्ड ऑटो मिलते थे। हैरान परेशान धनराज ने शेयर्ड ऑटो किया और 5 रुपए में भाईंदर स्टेशन पहुंच गया। पुल पार करके वो भाईंदर पश्चिम पहुंचा और उसने भगत सिंह पुस्तकालय की सदस्यता ले ली। इस पुस्तकालय में होने वाली एक छोटी मोटी सी कवि गोष्ठी में एक बार वो मुख्य अतिथि बनकर आया था। 10 दिन जब दुनिया हिल उठी, इस नाम की किताब इश्यू करवा कर वो पुस्तकालय की मेज के एक कोने पर चला गया। उसे किताब के नाम ने आकर्षित किया था, लेकिन जल्दी ही वो ऊब गया। उसने किताब वापस कर दी और बाहर आ गया। रेल की पटरियों पर एक बड़ी सी खुली जमीन जिस पर लकड़ी के मोटे मोटे स्लीपर्स पड़े हुए थे, पर धनराज ने बहुत सारे बूढ़ों को देखा। उसे लगा बूढ़ों की कोई सभा है। उन बूढ़ों के पास से गुजरता हुआ धनराज वापस पुल पर आ गया और पुल पर चढ़ती उतरती भीड़ को देखने लगा। बहुत भीड़ हो गई है, उसने सोचा और खुद भी भीड़ का हिस्सा बनकर सीढ़ियां उतरने लगा। पूर्व में आकर वो शालीमार फर्नीचर के उपाध्याय जी के पास बैठ गया। धनराज के घर का ज्यादातर फर्नीचर शालीमार से ही गया था। उन्होंने धनराज के लिए कॉफी मंगवा ली।
बड़े दिनों बाद आना हुआ,
उपाध्याय जी ने पूछा।
क्या चाहिए?
अब घर में जगह ही कहां बची है, धनराज ने जवाब दिया। सब कुछ तो है।
हाँ सो तो है,
उपाध्याय जी खिसिया कर बोले।
अरे इस धंधे में भी बहुत मंदी आ गई है, कई कई दिन बीत जाते हैं, कोई कुछ खरीदने ही नहीं आता। लगता है सब लोग सब कुछ खरीद चुके हैं। अब तो दुकान का किराया निकालना भारी पड़ रहा है। उपाध्याय जी ने अपनी विशाल दुकान को निहारते हुए ठंडी सांस ली। धनराज ने बूढ़ों के बारे में पूछा,
वे लोग कौन हैं?
उन्हें उनके बेटे बहुओं या दामाद बेटियों ने घर से निकाल दिया है, इसलिए दिन भर पटरियों पर टाइम पास करते हैं।
क्यों? धनराज थोड़ा चकित हुआ और थोड़ा उदास। घर से क्यों निकाल दिया है?
क्या है कि लोग एक एक कमरे घरों में रहते हैं, बेटा या दामाद काम पर चले जाते हैं तो बेटियों बहुओं के बीच एक कमरे में कैसे रहेंगे, इसीलिए सुबह निकाल दिया जाता है और रात को वापस ले लिया जाता है,
उपाध्याय जी ने समझाया। इसका मतलब अपने सेक्टर एक के भी कुछ बूढ़ों का जीवन यही होगा,
धनराज ने सोचा और पूछा,
और इनका खाना?
वो बूढ़ों को लेकर चिंतित हो गया।
खाना रात को मिलता है ना, दिन में वड़ा पाव वगैरह खा लेते होंगे,
उपाध्याय जी ने लापरवाही से कहा।
अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ऐसे बूढ़ों को जानता हूँ जिन्हें उनके बेटों ने विरार से चर्च गेट का पास बनवा दिया है। बूढ़े सुबह विरार ट्रेन में जाकर बैठते हैं और रात को उसी ट्रेन से उतरकर अपने घर चले जाते हैं।
और लैट्रिन बाथरूम? धनराज ने पूछा।
अरे उसके लिए स्टेशन है ना।
उपाध्याय जी को धनराज की अज्ञानता पर चिढ़ सी मची।
और बताइए क्या चल रहा है?
चलना क्या है, धनराज मुस्कुराया और वापस शेयर्ड ऑटो में बैठकर घर लौट आया। धनराज का घर। रात को जब धनराज ने बिना शराब पिए खाना खा लिया तो सरिता खुश होने की बजाय दुखी हो गई। उसके भीतर एक खरा पश्चाताप उगाया। इतनी कठोर बात नहीं करनी चाहिए थी इस आदमी से जिसने परिवार को सारे सुख दिए। क्यों औरतें पति और बेटों में से किसी एक के साथ खड़ी नहीं रह पाती? सरिता ने सोचा और डबडबाई आंख लिए किचन में चली आई। 11 बजे के करीब रोहित घर में घुसा। उसने धनराज को सोफे पर पड़े देखा तो इशारों से सरिता से पूछा। सरिता ने चुप रहने का इशारा किया और रोहित चुपचाप बेडरूम में कपड़े बदलने लगा। खाना खाकर रोहित हॉल में आया और बोला,
पापा लाइट बंद कर दूं?
नहीं, धनराज ने जवाब दिया और करवट बदल ली। फिर पूरी रात धनराज ने दो ही काम किए, दाएं से बाएं करवट ली और बाएं से दाएं। उसकी करवटों को देर रात तक महसूस किया रोहित और सरिता ने। अगली सुबह फ्रेश होकर धनराज वापस भगत सिंह पुस्तकालय चला गया। उसने अलमारियों में लगी बहुत सी किताबों को देखा, क्राइम एंड पनिशमेंट, एना कैरेनिना, राम की शक्ति पूजा, मुक्तिबोध रचनावली, उखड़े हुए लोग, माँ, सारा आकाश, आदि विद्रोही, कुरुकुरु स्वाहा, एक चिथड़ा सुख, अपने अपने अजनबी, मित्रों मर जाने, आगो नहीं दुनिया को बदलो, पूंजी, रेवोल्यूशन इन द रेवोल्यूशन, 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, आधी रात की संतानें, तमस, काला जल, कौए और काला पानी, दर्शन दिग्दर्शन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क स प, अंधेरे बंद कमरे, ठुमरी, गोदान, कनुप्रिया, अंधायुग, मुर्दा घर, बेदी समग्र, मंटो नामा, दादर पुल के बच्चे, और फिर वो थक गया। किताबों से उसका वास्ता बीए पास करने तक ही रहा था। उसे लगा ये दुनिया उसकी नहीं है। बहुत बहुत हताश होकर वो वापस मेज पर बैठ गया। देर तक बैठा रहा, फिर थके कदमों से बाहर निकल आया। बाहर जीवन युद्धरत था। लोग हाथों में ब्रीफकेस लिए, कंधे पर झोला लटकाए, सिर पर बोझ उठाए ट्रेन पकड़ने के लिए भागे जा रहे थे। टिकट विंडो की लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। रेलवे स्टॉल पर खड़े खड़े बड़ा पाव, पाव समोसा, कचौड़ी खा रहे थे, कोक पी रहे थे, कानों से मोबाइल चिपकाए संदेश सुन रहे थे, भागकर ट्रेन के पायदान पर लटक रहे थे। किसी के पास किसी के लिए फुर्सत नहीं थी। भीड़ को देख अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन काम पर जा रहा है और कौन काम से निकाला जाकर लौट रहा है, किसके पास पैसा है और किसके पास पैसा नहीं है। सबके चेहरों में सिर्फ एक ही समानता है कि सबके चेहरे खामोश, चिंताग्रस्त और खोए खोए से नजर आते थे, फिर चाहे वे चेहरे स्त्रियों के हों या पुरुषों के। धनराज पुल पार करके भायंदर पूर्व की तरफ आ रहा था कि ठीक ठाक से दिखते लड़के ने उसे सीढ़ियों पर टोक दिया। आपके पास 3 रुपए हैं?
धनराज अचकचा गया और तेजी से बोला, हाँ है, क्यों? अब मुझे दीजिए ना, लड़के ने आग्रह किया। क्यों भाई? धनराज ने पूछा। लड़का कहीं से भी भिखारी जैसा नहीं लगता था। वड़ा पाव खाना है, लड़के ने गर्दन झुका दी। घर से भाग कर आए हो? धनराज ने पूछा। हाँ, लड़के ने स्पष्ट जवाब दिया। कहाँ से? धनराज की उत्सुकता में इजाफा हुआ। बिहार से, लड़का मासूमियत से बोला। क्यों? धनराज के तेवर आक्रामक हुए। काम की तलाश में, लड़का सहमा सा बोला। तो काम करो, ही क्यों मांगते हो? धनराज ने उसे नसीहत दी और 3 रुपए एक साथ दिए। लाइए काम, लड़का तत्परता से बोला। मैं काम करने को तैयार हूँ। सब बोलते हैं काम करो, पर काम देता कोई नहीं है। कहाँ कहाँ काम ढूंढा? पढ़े लिखे हो? धनराज के भीतर लड़के को लेकर दिलचस्पी पैदा होने शुरू हुई। यूं भी वो खाली ही तो था, अच्छा टाइम पास हो रहा था। कालबा देवी के बाजारों से लेकर भायंदर तक रोज घूमा हूँ, 10वीं पास हूँ, पर सब बोलते हैं कि किसी जान पहचान वाले को लाओ। लड़का व्यथित था। मुंबई आने की सलाह किसने दी? धनराज ने पूछा। किसी ने नहीं, लड़का सहजता से बोला। बिहार का लड़का लोग सब भाग कर या तो मुंबई आता है या कलकत्ता जाता है। तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं, धनराज गहरी उदासी में डूबकर बोला। और उसने लड़के को जेब से 1 20 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। धनराज रेलवे स्टॉल पर खड़ा इडली सांभर खा रहा था, जब उसने उसी लड़के को एक दूसरे आदमी से पूछते देखा, आपके पास 3 रुपए हैं? तो भीख मांगने का ये आधुनिक तरीका है, धनराज ने सोचा और खुद को छला गया महसूस किया। पैसे चुकाकर वो स्टेशन के बाहर निकल रहा था कि एकदम अचानक उसे अपने पिता की याद आई। उसने देखा स्टेशन के बाहर टिकट विंडो के सामने 40-45 साल का थका थका सा आदमी बांसुरी पर गा रहा था। चुपके चुपके रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए। धनराज रुक गया, कई लोग रुके हुए थे। वो आदमी भीख नहीं मांग रहा था, सिर्फ गाना गा रहा था। लेकिन उसकी आवाज में इतनी करुणा, इतना विलाप और इतना दर्द था कि लोग खुद ब खुद उसे 1 रुपया 8 आना 2 रुपया दिए जा रहे थे। धनराज ने भी 1-2 रुपए का सिक्का उसे दिया और सोचा, बिहार से आए उस लड़के को इस आदमी के सामने केवल खड़ा कर देना चाहिए। रखना छुपा के दिल के छाले, धनराज ने दोहराया और पिता की याद गहरी हो आई। मृत्यु के कुछ समय पहले तक पिता बिस्तर पर लेटे लेटे यही गाना गाया करते थे, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। मृत्यु की तरफ जाते पिता देख रहे थे कि जीवन भर के जी तोड़ संघर्ष के बावजूद घर उनसे संभल ही नहीं पाया था। अपने अंतिम दिनों में वो बहुत हताश थे और आंखें बंद करके गाते रहते थे, रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये तब की बात है जब धनराज बीए करने के बाद जोधपुर में नौकरी के लिए मारा मारा घूम रहा था और राकेश एक बिजली की दुकान में पढ़ाई छोड़कर रेफ्रिजरेटर मैकेनिक हो गया था। बाद में उसी दुकान पर धनराज भी लगा, लेकिन तब तक पिता के छाले फूट गए थे और उन छालों को उन्होंने हमेशा के लिए छुपा लिया था। घर पहुंचकर धनराज लेटने के लिए चला गया। सरिता ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। सरिता ने बताया कि वो सेक्टर 4 जा रही है। सेक्टर 4? क्यों? सेक्टर 4 के पब्लिक स्कूल में मैथ की टीचर चाहिए, सोचती हूँ अप्लाई कराऊं, सरिता ने बताया। ओह, धनराज के होंठ गोल हो गए। सरिता गणित की अच्छी जानकार थी। ठीक है, धनराज ने एक ठंडी सांस भरी और गुनगुनाने लगा, रखना छुपा के दिल के छाले रे। शाम 4 बजे धनराज बैठा अपने ब्रीफकेस की सफाई कर रहा था कि उसे कार्ड मिला, अयूबी सिक्योरिटीज। धनराज को याद आया कि जिन दिनों सम्राट समूह का पालघर वाला प्लांट लग रहा था, उन दिनों अयूबी सिक्योरिटीज के मालिक महमूद अयूबी ने उससे प्रार्थना की थी कि वो उसे काम दिलाए। फिल्मों में विलेन बनने आए महमूद अयूबी ने लंबे संघर्ष से ऊबकर छोटे स्तर पर सिक्योरिटी गार्ड्स का धंधा अपना लिया था। अयूबी चारकोप में उसका पड़ोसी था। बाप का तंबाकू का व्यवसाय था जो उसे रास नहीं आया। वो मुंबई में प्राण या प्रेम चोपड़ा या फिर अमजद खान बनने आया था, लेकिन निर्माताओं ने उसे मौका ही नहीं दिया। वापस घर लौटने में हेठ ही होती, इसीलिए उसने इस धंधे में उतरने की सोची। उसने चारकोप में अपने बाजू में एक और घर किराए पर लिया और अपने शहर अलीगढ़ से जांबाज किस्म के एक दर्जन बेकार युवाओं को बुलाकर उस घर में रख दिया। घर के बाहर उसने बोर्ड टांगा अयूबी सिक्योरिटीज और धंधे की तलाश में निकल पड़ा। उन्हीं दिनों धनराज ने उसके 12 में से 6 गबरू जवानों को अपने पालघर के प्लांट में रखवाया था। अयूबी ने कहा था, ये मुसलमान की जुबान है धनराज सेठ, आपने हमारी मदद की है, कभी हमको भी आजमा के देखना। बाद के दिनों में धनराज को पता चलता रहा कि महमूद अयूबी चारकोप की पतरे वाली बैठी चाल से निकलकर एक दो कमरों वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। उसका धंधा चल निकला है और उसकी सिक्योरिटी सर्विस में अब 50 से ज्यादा लोग हैं। सब के सब अलीगढ़, सहारनपुर, नजीबाबाद और मेरठ के मुसलमान नौजवान जो बिना रोजगार के अपने अपने शहरों में बेकार भटक रहे थे। मुंबई जैसे शहर में अयूबी 50 से ज्यादा लड़ाकू नौजवानों का माई बाप था। ये छोटी बात नहीं थी, लोग उन लड़कों को अयूबी के फंटर बोलते थे। घटाटोप अंधेरे में जैसे एकाएक टॉर्च जलकर बुझ जाए, धनराज उछल पड़ा। उसे लगा मुसलमान की जबान को जांचने का मौका आ पहुंचा है। समस्या ये थी कि उसके पास अयूबी का नया पता ठिकाना नहीं था। उसने तय किया कि अयूबी के पुराने घर चारकोप चलता है। फटाफट तैयार होकर धनराज घर से निकल पड़ा। मीरा रोड पहुंचकर उसने बोरीवली का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। चर्च गेट से आने वाली गाड़ियां थके, टूटे, झल्लाए, भुनभुनाते और भन्नाए लोगों को प्लेटफॉर्म पर फेंक रही थी। व्यस्त घंटे शुरू हो गए थे। उस तरफ के प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ टिड्डी दल की तरह बिछी पड़ी थी, सिर ही सिर। न उभरी हुई छातियों का आकर्षण, न उत्तेजक नितंबों को लेकर कोई सिस्कारी, जैसे वीत रागियों का हड़बड़ाया हुआ समूह माया लोक से निकलकर मुक्ति के रास्तों पर भागा जा रहा हो। हालांकि चर्च के जाने वाली गाड़ियां खाली थी, फिर भी एहतियातन धनराज ने प्रथम श्रेणी का ही टिकट लिया था। बोरीवली तक ही तो जाना था। ट्रेन आई तो वो आराम से चढ़ गया और गेट पर खड़ा होकर हवा खाने लगा। वो दहिसर और बोरीवली के बीच बसी झोपड़ पट्टी और उनमें रहते हुए लोगों का मुआयना सा करने लगा। दो तीन लोग पास में डिब्बे या बोतल रखकर पूरे जमाने से निरपेक्ष होकर पटरियों पर बेफिक्री से निपट रहे थे। कुछ औरतें अपनी झोपड़ियों के बाहर बैठी परात में आटा गूंथ रही थीं। झोपड़ पट्टी से थोड़ा हटकर एक मैदान जैसी जगह में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। चार जवान छोकड़े और दो अधेड़ ताश खेल रहे थे और किसी बात पर ठहाका लगाकर हंसते जा रहे थे। एक बच्चा घुटनों घुटनों सरकता हुआ पास बहते गंदे नाले में जा गिरा था, जिसे बचाने के लिए एक औरत झोपड़ी से निकलकर नाले की तरफ चिल्लाती हुई भागी जा रही थी। और इसी बीच ट्रेन आगे बढ़ गई। ये जीवन पहले भी था धनराज। धनराज के भीतर कोई बुदबुदाया, बल्कि इससे भी ज्यादा बदतर और बेईमानी था। जरा सोचो, क्या तुम इस जीवन के भीतर 2-5 दिन के लिए भी सांस ले सकते हो? उसमें रह रहकर ठहाके लगा सकते हो? झिलमिल करती मदमस्त मुंबई की चकाचौंध करने वाला स्वर्ग इस जीवन के नरक पर ही टिका हुआ है। इस जीवन से ताकत लो धनराज। धनराज बौखला गया। ऐसा उसके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। ये कौन उसके भीतर छुपा उसे पुकार रहा है? बोरीवली उतर धनराज वेस्ट में आ गया। चारकोप के ऑटो में बैठकर उसने सिगरेट जला ली। चारकोप का चेहरा बदल गया था। चारकोप बस डिपो से गोराई जाने वाली खाड़ी के जिस मोड़ तक धनराज कभी रात में गुजरने की सोच भी नहीं सकता था, वो पूरा इलाका लखदक बाजारों, छोटे बंगलों और हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैटों से जगरमगर हो गया था। इस नए चारकोप के भीतर से पुराने चारकोप को तलाशना खासा कठिन था। धनराज अपने घर ले जाने वाली गली को भूल गया। धनराज 8 बरस के बाद चारकोप लौट रहा था। उसने ऑटो मेन रोड पर छोड़ दिया और बस डिपो के बगल में बनी पहली गली और उस गली के नुक्कड़ पर बने साईं बाबा के मंदिर को खोज निकाला। मंदिर पहले से ज्यादा बड़ा और भव्य हो गया था।
उसने मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े और गर्दन झुका दी। इसी गली के अंतिम सिरे पर वो मैदान था जिसमें दिसंबर के दंगों में मुसलमानों का सामान जलाया गया था। वहां एक 7 मंजिला इमारत खड़ी थी। उस इमारत को पार कर धनराज आगे बढ़ गया। आखिर वो रुका और उसने पान वाले से पूछा, क्यों बॉस, ये सेक्टर 4 में डॉक्टर लवंगारे वाली गली कौन सी है? डॉक्टर लवंगारे का क्लिनिक उस गली के मोड़ पर एकदम शुरू में था, जिस गली में कभी धनराज रहा करता था। डॉक्टर लवंगारे अपने मरीजों को इतनी गोलियां देता था कि उनके पेट भर जाएं, इसीलिए सरिता उसे घोड़ों का डॉक्टर कहती थी। लवंगारे वाली गली वही थी जिसके सामने कभी मैदान और अब 7 मंजिला इमारत खड़ी थी। धनराज उस गली में आगे बढ़ गया। आखिर रोड पर ही बनी 440/41 नंबर वाली पत्रे की चाल के सामने वो रुक गया। ये था उसका अपना घर। उसने बंद घर के बाहर लगी बेल बजा दी। दरवाजा खुला और धनराज एलिस के आश्चर्य लोक में जा गिरा। वही थी, एकदम वही सपना सारस्वत, मलाड के चांदनी बार की उसकी पसंदीदा डांसर। बीते दिनों में एंटरटेनमेंट के वाउचर बना बनाकर बहुत पैसे लुटाए थे उसने सपना सारस्वत पर। तुम? दोनों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा। आओ आओ भीतर आओ, सपना ने मुस्कुरा कर कहा। कितने वर्षों के बाद आए हो, लेकिन ध्यान रखना मेरे निकलने का टाइम हो गया है। हाँ, सपना ने अपनी घड़ी दिखाई। धनराज भीतर आ गया। वो सपना को भूल उस घर को घूम घूम कर देखने लगा। पुलिस में भर्ती हो गए हो क्या? सपना खिलखिलाई। पागल, मैं इस घर में कभी रहा करता था? धनराज ने सपना के गालों को थपथपा दिया। कितने जमाने के बाद उसके जीवन में एक मचलता हुआ उल्लास लौट रहा था। क्या बात कर रहे हो? सपना दंग रह गई। तो क्या मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ? नहीं रे, धनराज उसी उल्लास के बीच खड़ा खड़ा बोला, बंबई में घर इतनी आसानी से नहीं बनते। अरे तुम तो वैसी की वैसी हो, एकदम चकाचक। वो सपना को निहारने लगा। अरे हमको चकाचक रहना पड़ता है धनराज, हमारा पेशा है ये। सपना की आवाज उखड़ने लगी। उखड़ो मत। धनराज ने अचानक गार्जियन की भूमिका संभाल ली। धंधे का टाइम हो रहा है तुम्हारे, अभी भी चांदनी बार में ही नाचती हो? नहीं नहीं, अभी मैं लोटस में हूँ, सपना ने इतरा कर कहा। अरे बाप रे, लोटस तक पहुंच गई तुम? धनराज चकित हो गया। अगली छलांग कहाँ की है? दुबई की। लड़कियां श्रीदेवी और रेखा बनने बंबई आती थी और बारों में नाचने लगती थी। बारों में नाचते नाचते उनका सपना अभिनेत्री बनने के बजाय लोटस पहुंच जाने का होता था। लोटस में नाचते नाचते वे दुबई पहुंच जाती थी, शेखों के दरबार में। 5-7 साल दुबई में गुजार कर वे वापस मुंबई लौटती थी। ढेर सारे हीरे जवाहरात, मोटे बैंक बैलेंस, निचुड़े हुए सीनों और गंभीर बीमारियों के साथ मुंबई की किसी अच्छी जगह पर अपना फ्लैट खरीदती और उसी फ्लैट में खाते पीते और मुटाते हुए एक दिन मर जाती थी। अरे मुझे दुबई नहीं जाना बाबा, सपना सिहर गई। दुबई तो तुमको जाना ही पड़ेगा रानी। धनराज हंसने लगा। लोटस के शब्दकोश में न अक्षर छुपा ही नहीं है। अरे तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें दुबई जाना ही पड़ेगा। सपना लजा गई और फिर बाहर निकलकर ताला बंद करने लगी। खाली जाते ऑटो को रोककर वो उसमें बैठती हुई बोली, दुनिया बहुत छोटी है, शायद हम फिर मिल जाएं। वैसे तुमने मेरा घर, सॉरी अपना घर तो देखा ही हुआ है। बाय। धनराज ने हाथ हिला दिया और फिर घर के बाहर बनी दीवार की रेलिंग पर बैठ गया। दो लड़कियां सामने से गुजरी, उन्होंने धनराज को उड़ती नजर से देखा, फिर उनमें से एक ठिठक गई। आप धनराज अंकल है ना? वो बोली, रोहित के पापा। हाँ। धनराज ने कुछ याद करने की कोशिश की। तुम? अंकल मैं डॉली हूं, डॉली काकड़े। लड़की पास चली आई। अरे आप इतने बड़े हो गए? धनराज को याद आ गया। वो विनोद काकड़े की बेटी थी जो कभी कभी अपने घर से उसके लिए फिश फ्राई लाती थी।
विनोद काकड़े इसी सोसाइटी में अंदर रहता था और बेस्ट फ्रेंड ड्राइवर था। घर चलिए ना अंकल, लड़की मचलने लगी। अरे अभी नहीं बेटे, धनराज ने मना कर दिया। मुझे तुम ये बताओ कि सामने वाली सोसाइटी में जो अयूब अंकल रहते थे उनका पता कहाँ मिलेगा?
पान बूढ़े भाभी है ना, उनसे पूछिए ना।
लड़की ने सलाह दी और बोली, आंटी को भी बोलिए ना कभी इधर तो आए।
जरूर जरूर,
धनराज ने जवाब दिया और पान बूढ़े भाभी के घर की तरफ बढ़ने लगा। पान बूढ़े भाभी अपने घर के बाहर दुकान लगाती थी और अयूबी का वहां सिगरेट, सोडे और नमकीन का खाता चलता था। पान बूढ़े भाभी का पति अच्छा गायक था, लेकिन फिल्मों में मौका न मिल पाने के कारण शराब पी पी कर मर गया था। वो इस गली की जगत भाभी थी। चार कोप के दिनों वाली दूसरी होली में धनराज ने भाभी के स्तनों पर रंग मल दिया था। भाभी गुर्राने लगी थी, फिर कमरे में जाकर चापर निकाल लाई थी। धनराज ने माफी मांग ली थी, वो थोड़ा मोटा गई थी, लेकिन हंसती अभी भी उसी अंदाज में थी जिसे देख आदमी फिसलने फिसलने को हो जाए। अयूबी अभी तो बहुत बड़ा सेठ है, भाभी ने बताया। अब भी इधर एक सेक्टर 6 बन गया है, गोराई के बाजू में। कोई भी ऑटो में बैठ जाओ, अयूबी तक पहुंचा देगा। कोई खास बात?
नहीं भाभी, बस यूं ही सोचा मिल लेता हूँ।
अच्छा फिर आता हूँ। धनराज भाभी से विदा लेकर खाली जाते ऑटो में बैठ गया और बोला, सेक्टर 6 अयूबी के दफ्तर। ऑटो वाले ने धनराज को सिर से पांव तक मुआयना किया और बोला, ऑफिस तो नजीक है, पन 50 रुपया लगेगा और अपन ऑफिस के सामने नहीं छोड़ेगा, दूर से दिखा के चलाएंगे, चलेगा?
चलेगा,
धनराज ने जवाब दिया। सेक्टर 6 की पुलिस चौकी के पास ऑटो वाले ने धनराज को उतार दिया और बताया, ओ जो सामने काले कांच के दरवाजों वाली बिल्डिंग है ना, ओ अयूब सेठ की है। धनराज ने चुपचाप 50 रुपए दे दिए। ऑटो मुश्किल से 10 मिनट चला होगा। धनराज को याद आ गया, ये वही रास्ता है जो गोराई बीच ले जाने वाले तट पर जाता है। तट से बोट लेकर उस पार उतरते हैं, फिर तांगे में बैठकर गोराई बीच जाते हैं। चार कोप वाले दिनों में वो सरिता और रोहित के साथ कई बार इसी रास्ते से गोराई बीच जा चुका है, लेकिन तभी रास्ता कितना सुनसान रहता था। बिल्डिंग और रो हाउस तो क्या, एक चाय की गुमटी भी नजर नहीं आती थी। लगातार मुंबई आ रहे लोग एक दिन इसकी एक एक इंच जगह पर खड़े हो जाएंगे, धनराज ने कल्पना की। काले कांच के दरवाजों के बाहर धनराज को दो सशस्त्र वॉचमैनों ने रोक लिया। किससे मिलने गए?
अयूबी से,
धनराज ने उत्तर दिया। कार्ड? एक वॉचमैन ने आगे हाथ बढ़ाया। धनराज ने पर्स निकाला, संयोग से सम्राट समूह के मीडिया डायरेक्टर वाले 2-3 विजिटिंग कार्ड उसमें मौजूद थे। उसने एक कार्ड पकड़ा दिया और देखा बिल्डिंग के गेट पर सुनहरे अक्षरों में अयूबी सिक्योरिटीज ही लिखा था। वो थोड़ा सा आश्वस्त हुआ। उनमें से एक वॉचमैन भीतर गया और करीब 3 मिनट बाद वापस आया। जाइए। धनराज ने काले कांच का दरवाजा भीतर की तरफ धकेल दिया और एसी की ठंडी फुहार से प्रफुल्ल हो गया।
सॉरी सर,
एक महिला ऑपरेटर बोली और उसने अपने सामने की बेंच पर बैठे हुए कुछ सादी वर्दी वालों को इशारा किया। तत्काल दो लोग उठे और उन्होंने धनराज को सिर से पांव तक मय ब्रीफकेस के जांच लिया। इसके बाद उनमें से एक ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। धनराज चल पड़ा। एक गलियारा पार करने के बाद साथ आए आदमी ने एक कमरे का दरवाजा खोला और बोला, जाइए। भीतर अयूबी था, वो अयूबी नहीं जिसकी धनराज ने मदद की थी। ये चमकते हुए लेकिन खींचे हुए कटावदार चेहरे वाला वो अयूबी था जैसा वो फिल्मों में बनने आया था। सुनहरे पर्दे पर तो उसे मौका नहीं मिला, तो वास्तविक जीवन को उसने इस दिशा में मोड़ लिया। वो कीमती शेरवानी में था, उसके बाएं हाथ पर राडो घड़ी और दाएं हाथ पर सोने का ब्रेसलेट था। गले में काफी मोटी सोने की चेन डाले एक अजीब सी बड़ी मेज के पीछे वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। धनराज के प्रवेश करते ही वहां मौजूद 3-4 लोग कमरे से बाहर निकल गए। अरे वेलकम धनराज सेठ, अयूबी ने खड़े होकर अपनी बाहें फैला दी। बहुत दिनों बाद अपन को याद किया तुम। अयूबी से गले मिलकर धनराज उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो समझ नहीं पाया कि बात का सिरा किधर से था। मैं चुप रहकर वो इस बात का अंदाजा लगाने में व्यस्त था कि अयूबी सिक्योरिटीज में उसे उसके लायक क्या काम मिल सकता है। मेरी नौकरी चली गई।
धनराज तत्काल मुद्दे पर आ गया। अपुन को क्या करने का है? अयूबी ने पूछा। अपुन ने तुमको जबान दिया था सेठ, बोलो अपुन तुम्हारे वास्ते क्या कर सकता है?
मुझे तुम्हारे यहाँ नौकरी मिल सकती है?
धनराज ने सीधे ही पूछ लिया। उसके सवाल पर अयूबी की हंसी छूट गई। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया। थोड़ा संभल कर वो बोला,
मजा आ गया सेठ, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी एकदम वैसा ही हो।
सिर झुकाकर कोलू के बैल की माफिक डगर डगर करते हुए हैं। अच्छा अच्छा टाइम पास हुआ आज। फिर उसने इंटरकॉम उठाकर ऑपरेटर से कहा, ओ सलीम लंगड़े को भेजो तो। भरे पूरे बदन और शातिर सी आंखों वाले, दोनों पैरों पर चलकर आने वाले जिस आदमी ने भीतर आकर अयूबी से यस बॉस ऐसा कहा, उसे देखकर धनराज अचरज में पड़ गया। इसका नाम लंगड़ा क्यों है?
लंगड़ा अयूबी फिर हंसने लगा, ये अपना धनराज सेठ है, अपने शरीफ दिनों का शरीफ दोस्त। अपन को उठाने में इसने बहुत मदद किया था, अभी इसको मदद का जरूरत है। अभी अपुन लोग इसके वास्ते क्या कर सकता है?
किस टाइप का मदद बॉस? सलीम लंगड़े ने अदब से पूछा।
इसका सेठ इसको नौकरी से निकाल दिया है,
अयूब ने बुदबुदा कर कहा।
सेठ को खल्लास करने का है?
नहीं नहीं नहीं, धनराज डर गया और सहम कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
अरे अरे बैठो बैठो धनराज सेठ, बैठो। 10 साल के बच्चे के माफिक मत डरो, अपुन तुम्हारी समस्या पर डिस्कस कर रहे ला बाबा।
अयूबी ने धनराज को कंधे पकड़कर वापस बैठा दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लिया। फिर वो कुछ कुछ संजीदगी और कुछ कुछ हताश की सी स्थिति में बोला,
अयूबी का जुबान झूठा पड़ गया धनराज सेठ,
तुम शरीफ आदमी है, अपुन तुमको यहाँ काम नहीं दे सकता है, अपुन का धंधा अभी बदल गया है। तो मैं चलूं? धनराज उठने लगा। 50,000 या 1,00,000 जो बोलो, अब भी ब्रीफ केस में रखवा देता हूँ। अयूबी की सदाशयता को देख धनराज विस्मित रह गया। 50,000 की बात अयूबी इस तरह कह रहा था जैसे 500 रुपए देने हो। अरे नहीं नहीं धन्यवाद, मैं चलता हूँ। धनराज पूरी तरह खड़ा हो गया। ठीक है, अयूबी भी खड़ा हो गया।
सेठ मेरे को गलत मत समझना, क्या है कि ये काम तुमको परवड़ेगा नहीं।
धनराज चुपचाप बाहर आ गया। बाहर दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं था। धनराज पैदल पैदल चलता मेन रोड पर आ गया। ऑटो में बैठकर वो थका थका सा बोला, मुझे घर ले चलो।
घर?
ऑटो वाला चकरा गया। हाँ मतलब बोरीवली स्टेशन छोड़ दो, धनराज ने लगभग बुदबुदाते हुए कहा और सिगरेट जलाने लगा।
घर खोजने, घर बनाने, घर सवारने, घर संभालने और घर बचाने में ही जीवन बीत गया है धनराज। अब घर से थोड़ा ऊपर उठो, वरना पता चलेगा कि घर भी नहीं बचा और जीवन भी गया।
धनराज का मस्तिष्क सहसा दार्शनिक किस्म की बातें सोचने लगा था। बोरीवली स्टेशन के बाहर पटरियों के किनारे बसे गरीबों के घर टूट रहे थे। मनपा का तोड़ दस्ता पुलिस के संरक्षण में लोगों के घर उजाड़ रहा था और लोग अपना छोटा मोटा सामान बचाने में जुटे थे। धनराज उन टूटे हुए घरों को देखता हुआ पुल पर चढ़ा और बोरीवली पूर्व की तरफ उतरने लगा।
गजब है इनका जीवन, धनराज सोच रहा था। 2 दिन बाद ये लोग फिर यहाँ घर खड़ा कर लेंगे, आखिर बंबई आने के बाद कोई यहाँ से जाता थोड़े ही है। घर रहे या ना रहे, प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ उन्मत्त और आक्रामक थी।
धनराज ने मान लिया कि उससे ट्रेन नहीं पकड़ी जाएगी। रात के 9 बज रहे थे। इस समय बोरीवली से विरार की ट्रेन पकड़ना असाधारण वीरों का ही काम है। सीढ़ियां उतरकर खोमचों, ठेलों और दुकानों को निरुद्देश्य ताकता हुआ वो भायंदर जाने वाली बस के स्टॉप पर आ गया। बस समय जरूर ज्यादा लेती थी, लेकिन ठीक गोल्डन नेस्ट के दरवाजे के बाहर उतारती थी। दरवाजे के बाहर खासी भीड़ थी, 5 सेक्टरों की मिली जुली भीड़। कुछ पुलिस वाले भी इधर उधर टहल रहे थे। उस भीड़ को चीरते हुए धनराज राजकुमार पान बीड़ी शॉप पर चला गया, उसकी सिगरेट खरीदने की नियमित दुकान। दुकान के मालिक राजकुमार ने रहस्यमय अंदाज में रस ले लेकर बताया, सेक्टर 5 के सोना ब्यूटी पार्लर पर पुलिस की धाड़ पड़ी है। कॉलेज की 5 लड़कियां 5 अधेड़ उम्र पुरुषों के साथ अश्लील हरकतें करती पकड़ी गई हैं। और पकड़े गए पुरुषों में एक वर्मा साहब भी हैं, सेक्टर 4 के वर्मा साहब। अरे जिनकी गोरेगांव पश्चिम में बहुत बड़ी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है और जिनका बेटा फोर्ट की कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर है। अरे वर्मा साहब ने सेक्टर 4 की इज्जत का एकदम कचरा कर दिया। राजकुमार हंसने लगा। सुमार में तो आदमी पालक हो जाता है, अरे हमको लग रहा है चुसवा रहे होंगे। राजकुमार फिर हंसा। अब उनकी बेटी रोड पे कैसे गुजरेगी।
बड़े वर्मा साहब।
20वीं सदी के उत्तरार्ध की कोक से पैदा हुआ उत्तर आधुनिक समय हंस रहा था। शहर के अखबार और बाजार .com कंपनियों के विज्ञापनों से अटे पड़े थे। जूहू की गलियों में चोरी छिपे चलने वाला देह व्यापार का धंधा पिछड़ रहा था। महंगे और बड़े कॉलेजों में बिंदास किशोरियां चिपकी हुई जीन्स और टॉप के साथ कॉलेजों के बाहर निकलकर केवल एक रात के डिस्को जीवन और डिनर विथ बियर के सौदे पर लेन देन कर रही थी। इंटरनेट पर पोर्नो साइट सबसे ज्यादा पैसा पीट रही थी। पूरे दुनिया की हजारों नंगी लड़कियों को करोड़ों बाप बेटे कंप्यूटर के मॉनिटर्स पर देखने में मशगूल थे। सरकारें अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही थी। मल्टीनेशनल कंपनियों का अजगर बाजार को लीलता हुआ घुसा चला जा रहा था। कारें बढ़ती जा रही थी, हवा और पानी समाप्त हो रहे थे। मुंह में चीज बर्गर या चिकन सैंडविच या मटन रोल दबाए और हाथ में कोक की बोतल थामे युवा लड़के .com कंपनियों में 14-14 घंटे खप रहे थे। जवान होती लड़कियां अपने उत्तेजक सीनों और कामातुर नितंबों के साथ फिल्म फाइनेंसरों की हथेलियों पर नाच रही थी। अकेले छूट गए बूढ़े लोगों को उनके फ्लैटों में घुसकर कत्ल किया जा रहा था। बच्चों को क्रेच में फेंका जा रहा था और माएं लोकल में लटक कर काम पर जा रही थी। दुनिया की सबसे छोटी कविता लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर खड़ी अट्टहास कर रही थी। आई वाई गोल्डन नेस्ट के सेक्टर 4 की उदीयमान अभिनेत्री गीता अलूलकर ने सोचा और 7वें माले के अपने कीमती फ्लैट की खिड़की से छलांग लगा दी। गीता अलूलकर के साथ साथ उसके गर्भ में जन्म ले चुका उसका बच्चा भी मारा गया। आई वाय सेक्टर 1 के शराबी ऑटो ड्राइवर की बीवी शोभा नार्वेकर ने सोचा और बदन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। फिर घर से निकलकर पूरे सेक्टर में वो पछाड़ खाती फिरती रही। नागपाड़ा पुलिस चौकी में बिना सोए 26 घंटे की ड्यूटी दे रहा कांस्टेबल सलोंखे बड़बड़ाया, आए वाय। फिर उसने खुद को गोली मार ली। घर से निकाल दिए गए 70 साल के सतवीर राणा ने दोहराया, हाय वाय। फिर वो विरार फास्ट के आगे कूद कर कट गया। 12वीं में पढ़ रहे साइंस के स्टूडेंट नासिर हुसैन ने सोचा, आय वाय। और बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहपाठी रमेश टिपणिस के चेहरे पर तेजाब फेंक कर भाग खड़ा हुआ, आय वाय। एक संवेद और नसों को तड़का देने वाला शोर उठा और मालाड गोरेगांव चेंबूर डोंबिवली कुर्ला भायंदर मुलुंड कल्याण विरार के नौजवान और हताश लड़के सीधे हाथ की उंगलियों को रिवॉल्वर की शक्ल में ताने दगड़ी चाल की गलियों में गुम हो गए जहां 7,000 में शूटरों की भर्ती चल रही थी। आय वाह। छोटे मोटे बिल्डर और शराब घरों के मालिक सोचते थे और चुपके से सत्ता के गलियारों में दाखिल हो जाते। पत्र पत्रिकाएं बंद हो रही थी, पुस्तकालय सूने पड़े थे, बड़े लेखक या तो मर गए थे या चुक गए थे। मीडियोकर लेखकों को शौचालयों के मालिक, जूतों और टायरों के मालिक, शराब कंपनियों के हिस्सेदार लाखों रुपए में पुरस्कार बांट रहे थे। जन संघर्षों में सक्रिय रूप से जुड़े रचनाकारों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा था। युवा लेखक टीवी सीरियलों के फूहड़ संसार में सेंध लगा रहे थे। अपहरण ने उद्योग का और हफ्ता वसूली ने धंधे का रूप धर लिया था। गुंडे नगर सेवक बन गए थे, डॉक्टर व्यापारी और क्रिकेटर घपलेबाज। और इस पूरे सीन पिक्चर में धनराज के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। नहीं, ये वो बबलू नहीं था
जिसे धनराज अमिताभ बच्चन बनने का सपना देखते हुए जोधपुर में छोड़ गया था। ये सलोने लंबोतरे चेहरे, स्वप्निल आंखों और बात बेबात पर मुस्कुराता किशोर नहीं था, ये नागेश चौधरी था। नागेश चौधरी का चेहरा सख्त और खुरदुरा था, उसकी आंखों में एक बनैली हिंसा और क्रूर चमक कौंधती थी। हंसता वो अभी भी था, लेकिन अब उसकी हंसी में एक उपेक्षा जैसा कुछ रहता था। सबसे बड़ी बात, उसकी बातें अजनबी हथियारों के रहस्यमय देश से आती अंतिम आदेशों जैसी थीं। इस नागेश चौधरी को अपने सामने खड़ा पा धनराज तो एकाएक लड़खड़ा ही गया। धनराज जोधपुर आया हुआ था सपरिवार। बहुत जमाने के बाद वो अपने कुल कुनबे के बीच था। एक बहुत सादे विवाह समारोह में ममता को विदा कर देने के बाद वे सब लोग अजीब सी फुर्सत में एकाएक खाली हो गए थे। शादी का सारा इंतजाम, भाग दौड़ और सरंजाम राकेश ने एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह अंजाम दिया था और वो अपने प्रयत्नों को शहीदों की सी मुद्रा में एकालाप की तरह गा रहा था। धनराज और सरिता उसकी शौर्य गाथा को बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे, जबकि नागेश के चेहरे पर एक अजीब सा वीतराग था। ये वीतराग धनराज ने अपनी माँ के चेहरे पर भी देखा था। पता नहीं माँ बेटे में से किसने किसके चेहरे से ये वीतराग चुरा लिया था। ठीक ठीक यही वीतराग धनराज ने पिता के अंतिम समय में उनके चेहरे पर भी देखा था। कहां से आता है ये वीतराग? बुआ की शादी में लड़के वालों के दल में शामिल होकर रोहित जमकर नाचा था और अब थक कर दादी की गोद में सिर छुपाकर एक बेफिक्र नींद में चला गया था। राकेश की पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ दूसरे कमरे में जा चुकी थी। बैठक वाले कमरे में बाकी लोग थे, सरिता, धनराज, राकेश, नागेश, माँ और सोता हुआ रोहित। बीच बीच में ममता की यादें भी टहलने चली आती थीं। इस पूरे कुनबे को बैठक की दीवार में फ्रेम में जड़े पिता मुस्कुराकर देख रहे थे। राकेश की शौर्य गाथा से पूरी तरह निरपेक्ष नागेश टीवी पर समाचार सुन रहा था और देख रहा था। अचानक वो रुका। धनराज ने देखा टीवी पर उद्घोषिका कह रही थी, जनाधिकार अभियान के सिलसिले में मुंबई आए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने पत्रकारों को बताया कि या तो एनरॉन द्वारा महाराष्ट्र को लूट लिया जाएगा या महाराष्ट्र की जनता एनरॉन को लूट लेगी। केंद्र सरकार की उदार अर्थव्यवस्था तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भारत के लिए खतरे की घंटी बताते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि उदारीकरण एवं विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए जाने के कारण इतनी विषमता पैदा हो गई है कि गरीब इलाकों में भारी तनाव की स्थिति छाई हुई है। बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ कारखाने बंद हो गए हैं। सब्सिडी बंद हो जाने के कारण हमारे किसान आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि जो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है वो कल हत्या भी कर सकता है। गुड। बबलू उर्फ नागेश चौधरी चहका। बुर्जुआ नेता भी चिंतित है। फिर उसने टीवी बंद कर दिया। धनराज ने राहत की सांस ली, फिर बात शुरू करने के लिहाज से बोला, बुर्जुआ मतलब? आप नहीं समझेंगे, छोड़िए। नागेश हंसी में हिकारत सी भरकर बोला, जिससे धनराज को चोट लगी। राकेश बता रहा था कि तुम गुंडागर्दी करने लगे हो। धनराज ने पलटकर वार किया। बहुत जोर का ठहाका लगाया नागेश चौधरी ने, फिर तिक्त लहजे में बोला, बीवी, बच्चे, माँ, बहन, नौकरी, आर्थिक तंगी की सदाबहार रुलाई के बीच मेढक की तरह टर्रा टर्रा कर जीवन गुजारते राकेश भाई की कोई गलती नहीं है। वे भी उसी सड़े गले समाज का हिस्सा हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। क्या बदलना चाहते हो तुम? धनराज तनिक जोर से बोला, मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ आ रही। आएंगी भी नहीं। नहीं आएंगी। नागेश फिर टहलने लगा, आप मुंबई के अपने सुखी जीवन में मस्त रहिए। क्या सुखी जीवन? हाँ? क्या सुखी जीवन? धनराज तिल मिला गया, मेरी नौकरी को गए 6 महीने हो गए हैं। तो क्या हुआ? नागेश रुका, रोहित कमाता है ना केवल 6,000 रुपए। धनराज ने याद दिलाया, केवल 6,000 रुपए? नागेश फिर हंसा, केवल? उन दिनों को भूल गए आप जब केवल 600 रुपए में हमारा बाप हम सबको पालता था? ममता को हम इंटर के बाद क्यों नहीं पढ़ा सके? इसलिए कि हम हर महीने उसकी फीस नहीं भर सकते थे।
बिहार के जिन गांवों में मैं काम करता हूँ ना, वहाँ के लड़के इंटरव्यू का बुलावा आने पर भी दिल्ली मुंबई इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास रेल का किराया नहीं होता है। बिहार के गांवों में क्या काम करते हो तुम?
धनराज की उत्सुकता जागी। वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, नागेश उपेक्षा से बोला। अरे मगर कैसा काम है? धनराज बुजुर्गों की तरह बड़बड़ाया। ये ऐसा काम है जो पूरा होने पर देश का नक्शा बदल देगा। नागेश की आंखें चमकी। लेकिन उस बदले हुए नक्शे में आप लोगों के लिए भी जगह नहीं होगी। वर्ग शत्रुओं के कत्लेआम के दौरान आप जैसे लोग भी मारे जाएंगे, पेटी बुर्जुआ रास्कल्स। धनराज सहम गया। उसे लगा राकेश ने शायद ठीक कहा था कि बबलू गुंडा हो गया है। धनराज ने राकेश की तरफ देखा, वो उबा उबा सा सोने के लिए दूसरे कमरे में जा रहा था। फिर नागेश भी बाहर चला गया, शायद किसी दोस्त से मिलने। ऐसे कौन से दोस्त हैं जो इतनी रात को भी जागते हैं, धनराज सोच रहा था। अंततः धनराज और सरिता ने भी उसी कमरे में चटाई पर बिस्तर लगा लिया और रोहित को जगाकर उस बिस्तर के कोने पर सुला दिया। माँ अपने कोने में पसर गई, माँ का वर्षों पुराना कोना। ये पिता का घर था, रखना छिपा के दिल के छाले। घर छालों की तरह फट गया था। घर की दुर्दशा को देखते देखते धनराज ने सरिता की तरफ ताका तो पाया कि सरिता धनराज को ताक रही थी। क्या सोच रही हो? धनराज ने पूछा। मुझे लगता है हमें इस घर को इस तरह नहीं भुला देना चाहिए था। सरिता की आंखें नम थी, वो एक सच्चे पश्चाताप के बीच खड़ी पिघल रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, धनराज ने जवाब दिया और करवट बदल ली। सुबह जब वो जागा तो कमरे के एक कोने में रोहित, उसका बबलू चच्चू और राकेश की दोनों बेटियां बातों में व्यस्त थे। सरिता शायद मंजू के साथ किचन में थी। और माँ? धनराज ने इधर उधर देखा। माँ कमरे की खिड़की के पार सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती दिख रही थी, शायद धूप में टहलने के लिए। धनराज ने देखा कि इस वक्त बबलू का चेहरा बबलू का ही था, शायद इसलिए कि वो मासूम बच्चों की निष्पाप दुनिया में बैठा था। बबलू रोहित को समझा रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लॉलीपॉप थोड़े से लोगों के लिए ही है बेटा, ये सब लोगों को चूतिया बनाने का गोरख धंधा है। जिस देश में 70% लोगों को रोटी नहीं मिलती, उस देश में कंप्यूटर क्रांति को तरजीह देना आवाम के साथ एक भोंडा मजाक है। हकीकत यह है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से इस देश में उपनिवेशवाद की वापसी हो रही है। उपनिवेशवाद क्या होता है चच्चू? रोहित ने पूछा। ये बताना तो बहुत कठिन है बेटे, बबलू उलझ गया। इसे इस तरह समझ लो कि अंग्रेजों के समय में हम उनकी एक कॉलोनी थे जहां वे लूटमार करते थे। अभी भी हम लूटमार की मंडी में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गेट और उदारीकरण का नकाब पहना हुआ है। पर चच्चू मुंबई में तो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाना खुशी की बात समझी जाती है। रोहित अपनी नौकरी को जस्टिफाई करने के चक्कर में था। मुंबई देश नहीं है बेटे, मुंबई देश के जिस्म पर उगा हुआ कैंसर है, बबलू हंसने लगा। धनराज को लगा बबलू की आत्मा में फिर से नागेश चौधरी प्रवेश ले रहा है। एक समय था, धनराज को याद आया, यही बबलू मुंबई जाने के नाम से रोमांचित हो उठता था। मैंने सुना है, बबलू पूछा करता था, वहां हेमा मालिनी सड़कों पर सब्जी खरीदती हुई दिख जाती है। चच्चू मेरे को अपनी पिस्तौल दिखाओ ना। ये सोना थी, राकेश की छोटी बेटी। नागेश जेब से रिवॉल्वर निकालने लगा। धनराज फिर सहम गया और करवट बदलकर वापस सो गया। दोबारा जब वो जागा तो धूप चढ़ाई थी। उस धूप में घर की दुर्दशा और भी चमकीली हो गई थी। ये ठीक है कि इन दिनों वो बेकार है, लेकिन सुखी दिनों में तो उसे कुछ पैसे हर महीने माँ को भेजते रहने चाहिए थे। वो सोचता था कि नो न्यूज इज द गुड न्यूज। उसे क्या पता था कि उसके भाई, उसकी बहन और उसकी माँ अपने दारिद्र के अभियान की ऊंची अटारियों पर चढ़े बैठे थे। शुरू में कुछ समय तक माँ की चिट्ठियां आती रही थी, उनमें वही सब होता था जो ढहते हुए घरों से आने वाली चिट्ठियों में होता है। ममता चुप रहने लगी है,
राकेश चिड़चिड़ा हो गया है, बबलू के लक्षण ठीक नहीं है, वो रात रात भर बाहर रहता है, कई कई दिन तक घर नहीं आता, तू बबलू को अपने पास क्यों नहीं बुला लेता। तब धनराज चारकोप की बैठी चाल वाले कमरे में रहता था। उसकी नई नई नौकरी थी जिसके नए नए जानलेवा तनाव थे। वो सोचता था कि थोड़ा संभल जाए तो कुछ करे, लेकिन तब तक माँ की चिट्ठियां ही आना बंद हो गईं। धनराज जानता है कि ये सब केवल खुद को दिलासा देने वाले तर्क हैं। गुनाहगार तो वो है। तभी रोहित के साथ वो आता दिखा, बबलू नहीं, नागेश चौधरी। रिवॉल्वर से क्या करते हो? धनराज ने लेटे लेटे पूछा। रिवॉल्वर से उस आदमी का भेजा उड़ा देते हैं जो भूखी बदहाल लड़कियों के साथ बलात्कार करता है, जो बच्चों से अपने खेत में बंधुआ मजदूरी करवाता है, जो किसानों के घर जला देता है। नागेश चौधरी हंसा। और कुछ जानना है? चच्चू, तू लोगों को मार देता है? ये रोहित था पूरे आश्चर्य के बीचों बीच। हाँ बेटा, कभी कभी लोगों को मार देना पड़ता है, बबलू ने रोहित को इस तरह समझाया मानो कभी कभी वो मच्छर मसल देता हो। तुझे पुलिस नहीं पकड़ती चच्चू? रोहित ने प्रश्न किया।
पुलिस में भी अपने दोस्त होते हैं बेटा, वो बता देते हैं कि भाग जाओ, फिर हम भाग जाते हैं।
बबलू अभी तक बबलू था, मुस्कुराता हुआ, सहज और सरल। और तू कभी पकड़ा गया तो?
रोहित की जिज्ञासाएं उफान पर थी। अरे तो तेरा चच्चू मार दिया जाएगा।
बबलू जोर जोर से हंसने लगा।
अरे मरना तो सभी को होता है बेटे, किस मकसद के लिए मरे ये बड़ी बात है।
खाना खाकर बबलू रोहित को जोधपुर का किला दिखाने ले गया। धनराज के दिमाग में हथौड़े चलने लगे। मकसद मकसद मकसद, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना, परिवार को सुखी रखना, क्या ये सब मकसद के दायरे में नहीं होता? धनराज सोच रहा था लगातार, क्या जीवन में उससे कोई चूक हो गई है? लोग गरीब हैं, भूखे हैं, अशिक्षित हैं, गटर में हैं, सड़क पर हैं, मारे जा रहे हैं, इसमें उसका क्या दोष है? मां आ रही थी, धीरे धीरे धीर गंभीर। धनराज उठकर बैठ गया। माँ के पीछे पीछे सरिता भी आई और सरिता के पीछे ताई ताई करती राकेश की दोनों बेटियां सोना और मोना। राकेश अपनी नौकरी पर जा चुका था। सुखी तो है ना? माँ ने पूछा और सोना मोना को अपनी गोद में बिठा लिया। धनराज हंसा, एक फीकी हंसी, पछतावे और दुख में डूबी डूबी सी। फिर उसने अचानक पूछा, डैडी की याद आती है? माँ ने इनकार में गर्दन हिला दी। धनराज ने देहरादून वाले दिनों में जाकर देखा, पिता नशे में धुत हैं और माँ को लात घूसों से पीट रहे हैं। उसने एकाएक पिता का हाथ पकड़ लिया है और भौचक के पिता ने माँ को छोड़ धनराज को पकड़ लिया है। धनराज के मुंह पर झापड़ रसीद कर उन्होंने उसे ठंडे बाथरूम में बंद कर दिया है। माँ का चेहरा एकदम शांत है, उसे कोई दुख सुख नहीं व्यापता। अपने दुख किससे बांटती हो? धनराज ने पूछा।
अरे मुझे कोई दुखी नहीं है।
माँ मुस्कुराने लगी।
मेरे दुख भी उसके हैं, सुख भी उसके हैं।
उसके? उसके कौन? धनराज चौंका।
राम जी के भैया।
माँ ने आंखें बंद कर ली। माँ का राम कौन है? धनराज असमंजस में पड़ गया। उसने 6 दिसंबर में जाकर देखा, राम का नाम लेकर ढेर सारे लोग मस्जिद गिरा रहे थे। खाना खाकर धनराज सोना मोना को गोद में लेकर छत पर चला गया। गर्मी के दिनों में इसी छत पर पिता की महफिल जमती थी, पिता के अंतिम दिनों वाला घर, जो उन्होंने दर दर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार जोधपुर में बना ही डाला था। पिता सोचते थे कि अपने पैरों पर खड़े होने के बाद उनके 3 बेटे इस घर को 3 मंजिला भवन में बदल देंगे।
बड़े पापा, हम मुंबई जाएंगे।
मोना ने धनराज को टोका।
अरे हम भी जाएंगे।
छोटी सोना ने सुर में सुर मिलाया। हाँ जरूर। धनराज ने दोनों को आश्वासन दिया और छत से दिखती दूर जाती उस सड़क को देखने लगा जिससे गुजर कर धनराज मुंबई और बबलू बिहार चला गया था। एक ही सड़क लोगों को अलग अलग जगहों पर क्यों ले जाती है? धनराज सोच रहा था। दोनों लड़कियां आपस में झगड़ने लगी। धनराज उन्हें लेकर नीचे आ गया। रात को जमीन पर बैठकर सब लोगों ने एक ही कमरे में एक साथ खाना खाया, गोश्त और चावल। गोश्त माँ ने पकाया था, मंजू ने बताया। माँ जी ने कई साल बाद अपने हाथ से मटन पकाया है। धनराज को फिर पिता याद आ गए। पिता कहते थे, तेरी माँ बिना मसालों के भी ऐसा गोश्त पकाती है कि बख्शीदा ढाबा भी शर्माए। बख्शीदा ढाबा देहरादून का एक मशहूर रेस्टोरेंट था जिस पर हर समय भारी भीड़ रहती थी, खासकर रात में। मैंने भी कई साल के बाद गोश्त खाया है, बबलू हंसने लगा। चच्चू, तेरे इलाके मटन नहीं मिलता? ये रोहित था। ज्वार की मोटी मोटी रोटी पर लहसुन और लाल मिर्च की चटनी मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं बेटे, बबलू बता रहा था। और अगर साथ में चोखा हो तो बात ही क्या। चोखा क्या होता है चच्चू? रोहित पूछ रहा था। आलू को उबाल कर उसे सरसों के तेल में मसल देते हैं। बस, रोहित चकित था। कौन लोग इतने गरीब होते हैं चच्चू? पिज्जा बर्गर कोक की दुनिया में बड़ा हुआ रोहित उबले हुए आलू के साथ सुख का सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। हर मेहनत करने वाला गरीब होता है बेटे, बबलू ने जवाब दिया। घर के सब लोग बैठे हैं, अचानक धनराज बोला, बबलू तुम क्या सोचते हो, मुझे अब क्या करना चाहिए? बबलू को संभवतः धनराज से इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। वो अचानक हड़बड़ा सा गया, फिर संजीदा होकर बोला, बुरा मत मानना भाई साहब, पूरे विवेक के साथ बोल रहा हूं। असल में आपकी समस्या यह है कि आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है। आप जैसे लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं, आपकी जरूरत ना इधर है ना उधर। बबलू ने कहा, एशिया की सबसे नारकीय झोपड़पट्टी धारावी आपके मुंबई में ही है, कभी वहां गए हैं आप? आपने नासिक के देवलाली गांव के बारे में सुना है? उसे विधवाओं का गांव कहते हैं। वहां के सारे पुरुष फायरिंग रेंज में चोरी से घुसकर पीतल तांबा बटोरते हैं ताकि उसे बेचकर पेट भर सके। पीतल तांबा बटोरते बटोरते वहां का एक एक पुरुष तोप के गोलों का शिकार हो गया है। निपाणी का नरक देखा है आपने? मुंबई की कितनी सारी कपड़ा मिले बंद हो गई है, उनके मजदूर क्या कर रहे हैं पता है आपको? मुझे मालूम है, इन सवालों से नहीं टकरा सकते आप, ये बहुत असुविधाजनक सवाल है। आपका पूरा जीवन मैं से मैं के बीच चक्कर काटते बीता है, इसीलिए बाकी लोग खुद ब खुद आपके जीवन से बाहर चले गए हैं। उन सब के जीवन में आपकी कोई जरूरत नहीं है। बबलू रुका, फिर वो नागेश चौधरी वाली हंसी हंसने लगा। ऐसा करो, आप मुरारी बापू की शरण में चले जाओ, सुना है मुंबई में उनकी नौटंकी बहुत सुपर डुपर हिट है। धनराज का सिर झुक गया। बबलू, सरिता ने खाना रोक दिया, तुम हद के बाहर जा रहे हो। सॉरी भाभी, बबलू ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। फिर वो हाथ धोने के लिए आंगन में बने नल पर चला गया। रात 10 बजे कोई लड़का बदहवास सा बबलू से मिलने आया। कुछ देर आंगन में कुछ खुसुर पुसुर की उन्होंने, फिर बबलू उसी के साथ घर से बाहर चला गया। जब बबलू को गए 2 घंटे बीत गए तो धनराज ने प्रश्नाकुल हो राकेश की तरफ देखा। राकेश ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, अरे वो गया, वो ऐसे ही जाता है। धनराज जड़ हो गया। मुंबई पहुंचने के अगले रोज धनराज के सीने में तेज दर्द उठा, उसका बदन पसीने पसीने हो गया, तकलीफ से उसका चेहरा ऐंठने लगा और दोनों आंखें बाहर निकलने को आतुर हो उठी। रोहित उस समय अपने ऑफिस में था और सरिता कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी। धनराज छटपटाकर बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के पास गिरा। उसके गिरने की आवाज सुनकर सरिता भागकर बेडरूम में पहुंची। फिर वो सामने वाले पड़ोसी के महाजन की मदद से उसे सेक्टर 5 के नर्सिंग होम में लेकर गई। धनराज को दिल का दौरा पड़ा था। स्वस्थ होने में धनराज को 1 महीना लगा। उसकी बीमारी में जोधपुर से कोई नहीं आ पाया। राकेश को छुट्टी नहीं मिली, ममता ससुराल में थी, उस तक खबर काफी देर से पहुंची। अकेली मां आ नहीं सकती थी और बबलू बिहार के गांव में था। बिस्तर पर पड़ा पड़ा धनराज अपने एकांत में गुनगुनाया करता, रखना छुपा के दिल के छाले रे। उन्हीं दिनों सरिता को सेक्टर 4 के पब्लिक स्कूल में नौकरी मिल गई। धनराज और अकेला हो गया।
ये अकेला धनराज एक रात गौतम बुद्ध की तरह सरिता और रोहित को छोड़ कहीं अंधेरे में गुम हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धनराज को हाथ में ईंट लिए अयोध्या के रास्ते पर पैदल पैदल जाते देखा था। आप सुन रहे थे कहानी नींद के बाहर का दूसरा भाग और इसके लेखक हैं धीरेंद्र अस्थाना। इस कहानी के बारे में जो डिटेलिंग लिखनी है वो मैं बता देना चाहूंगी। ये राइटअप के लिए है जब हम कहानी रिलीज करेंगे। एक इंसान जो सिर्फ आटा रोटी दाल चावल की जिंदगी बिताता है और उसके चलते मुंबई जैसे जो महानगर हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो इतने बड़े बड़े व्यवसाय हैं, ये इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन की दुनिया ने लोगों को इतना ज़्यादा जकड़ लिया है कि वो आम आदमी जो अपने घर से कनेक्टेड होना चाहिए, जो अपने परिवार से कनेक्टेड होना चाहिए, जिसके मन में प्यार दया प्रेम ये सब हो, राजनीति ने, दंगों ने, ग्लोबलाइजेशन ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने और जो वेस्टर्न कल्चर है उसने आदमी को ऐसा रगड़ कर रख दिया है कि वो हर एक आदमी धनराज के रूप में बदल गया है। तो इस कहानी में धनराज एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे आज हम सब गुजर रहे हैं, उसे उस समाज में हम सब लोग रहते हैं। तो इस कहानी में क्या हुआ, वो कौन सा समाज है जो इस ग्लोबलाइजेशन की जकड़ में है, उसके ऊपर ये कहानी है। ये इस कहानी का राइटअप है।